کے بعد سورت البقرہ شروع ہوتی ہے. بڑی خوبصورت سورت ہے, قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے. آپ اور میں اگر سورت البقرہ کو ایک نٹ شیل میں بند کر دینا, زندگی گزارنے کا طریقہ, 1000 حکم, 1000 چیزوں سے روکا گیا. اور سورت الفاتحہ اصل میں ایک ایمان والے کو سکھاتی ہے کہ جب تم اللہ کے بننا چاہتے ہو, تم اس کے حکموں سے جینا چاہتے ہو, تو تمہیں کیا کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کی تفسیر اور شان نزول اور حالات میں چلے گئے تو پھر تو بہت سارے دروازے کھلیں گے, لیکن اس سال انشاءاللہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے لینا ہے. اس سورت کے بالکل شروع میں مجھے آپ کو 3 قسم کے مختلف لوگوں سے متعارف کرایا جائے گا, اور پھر بعد میں سوچنے کا نقطہ دیا جائے گا کہ تم کدھر کھڑے ہو. آئیے شروع کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ بیچ بیچ میں سے اپنا محاسبہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, حروف مقطعات. سب سے طویل سورت کا پہلا لفظ بندے کو بے بس کر دیتا ہے کہ تم اپنی ساری عقل, ساری وزڈم, ساری تعلیمات جو تم دنیا میں حاصل کر چکے ہو, اس کے باوجود یہ 3 لفظ نہیں سمجھ سکتے اپنے عمل کے اعتبار سے, جب تک تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں. ان کے معنی اللہ کو پتہ ہے. بس میرے آپ کے ایمان کا امتحان ہے کہ کیا ہم لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شک عمل کا دشمن ہوتا ہے. ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ رکھتے ہیں. تقویٰ رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ یہاں سے ذرا سا متقی کا تعارف دیکھیے گا. آپ کے میرے لفظ ذہن میں لفظ متقی کے ساتھ کون آتا ہے؟ لمبی سی داڑھی, ٹخنوں سے اونچی شلوار, متقیہ ہوگی تو حجاب اور نقاب, بالکل ہاتھ میں بڑی سی تسبیح, یعنی عمل کے ماشاءاللہ ہر معیار کے بالکل آخری سرے پہ پہنچا ہوا شخص. حالانکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے, اس کتاب کی ضرورت متقیوں کو ہے, ہدایت ان کو ملے گی. تو جو سب کچھ کر چکے پھر ان کو اس کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھے, پھر بتاتی ہوں. دیکھیں, دوا کی ضرورت بیمار کو ہوتی ہے نا, صحت مند کو تو نہیں ہوتی. متقی تو صحت مند ہے, وہ تو پہلے ہی بہت نیک ہو چکا ہے, تو اس نے یہ کتاب پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کا اندازہ کہ متقی سے مراد نیک پرہیزگار لفظ نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ صرف اس لیے یہ کتاب پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ ایک تو اس کے بعد زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی, اور دوسرا کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو متقی کون ہوتا ہے, یہ جملہ لکھیے گا, جس کو اپنی ہدایت کی فکر لگ جائے, جو خود کو بدلنا چاہتا ہے, جس کے اندر یہ احساس شروع ہو جاتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں, مجھے چینج کرنا ہے. اور ایسے لوگ اللہ کی نظروں میں بڑے مقرب ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے آج آپ کا یہاں آنا آپ کے لیے بھی متقیہ کے لفظ کا غماز بن جائے. آپ کے دل میں طلب اور تڑپ تھی نا کہ میں کچھ سیکھوں, میں اللہ کی مرضی جانوں. پہلے بھی بہت آتا ہے ماشاءاللہ, پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے, چلو اب اس سال ایک بار پھر پڑھ کے دیکھتی ہوں. تو مبارک ہے آپ سب کے لیے, کیونکہ اس کتاب سے ہدایت لینے کی پہلی شرط ہے کہ بندہ خود کو بدلنا چاہے. بندہ خود کو بیمار سمجھے, بندہ خود کو گناہگار سمجھے, تو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ متکبرین کو اس کتاب سے فائدہ نہیں ہوتا. خود پسند لوگوں کو, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کو اس کتاب سے نہیں ملے گا. پھر کون ہیں وہ لوگ؟ اب ان کی کچھ ڈسکرپشن. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے پہلی آیت کے اینڈ پہ 3 کام ہیں, ایمان, دل کا سودا. کیا ہوتا ہے ایمان؟ وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. سورۃ الاسر کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں, بلکہ صحابہ کا بھی کال آتا ہے, کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا اور صرف سورۃ الاسر نازل کر دیتا تو ہماری ہدایت کے لیے کافی تھی. اس میں جو بات کہی گئی وہ کیا تھی؟ ہر انسان نقصان میں ہے, تو ہم بھی نقصان میں ہی نا. زندگی کا جو دن گیا وہ گیا, کل واپس تو نہیں آئے گا. यस्टरडे को टुमारो तो नहीं बना सकते, टुडे भी जा ही रहा, आधा रह गया आधा चला जाएगा। तो हम में से हर एक अपनी मौत की तरफ जा रहा है, हर चीज दिन ब दिन खत्म हो रही है। आज सेहत है कल नहीं रहेगी, आज जवानी है कल नहीं रहेगी। हाँ मगर इस जाति जवानी को और इस जाति सेहत को बचाने का एक ही रास्ता है, क्या? अल्लज़ीना आमनु। पहला, ईमान लाओ। ईमान क्या होता है? मैं आपसे एक लफ्ज़ पूछती हूँ, ये मेरे सामने जब माइक रखा गया, ये किस चीज़ से चल रहा है? बिजली से, जज़ाकअल्लाह खैर। हमारे सेल फोन्स किससे चलते हैं? आपकी गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से। बात समझ गया। हर चीज को चलाने के लिए कोई फ्यूल होता है ना, ईमान नेकियों का फ्यूल है। ईमान नेकियां करने की ताकत देता है। हमें बहुत सारी नेकियों के मौके का पता चलता है, हम नहीं कर पाते, उस वक्त वो मतलूब ईमान नहीं होता। ईमान नहीं है तो याद रखिए, खाना काबा के बिल्कुल पहलू में बैठे हुए लोग भी जाके जमात से नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद के अंदर घर वो लोग जुमा छोड़ देते हैं, ईमान नहीं है। मैंने आपने अल्लाह से ईमान मांगना है, ईमान को पुख्ता कीजिए। और ईमान ही तो असल दौलत है ईमान वाले की, जन्नत में जाने की सबसे लीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट, सबसे कम से कम एहलियत एबिलिटी जो जन्नत में दाखिल करने की है वो ईमान है। शुक्र कीजिए इस पर, जरा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जहां उसने सेहत दी, जहां उसने जिंदगी दी, वहां ईमान की दौलत भी नेमत नहीं है? जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, सिर्फ सोच के कांपने वाली बात है। अगर मुसलमान मां के घर में पैदा ना होती, अगर बाप मुस्लिम ना कहलाते, तो मैं आज कहां होती? क्या ये इतना जज्बा इतना शौक है? क्या दीन सीखने का इतना मौका, कुर्बानियां देने का है मौका? याद रखिए, तुम खुशकिस्मत हैं, पैदा तो हर बच्चा ही मुसलमान होता है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती क्या है कि हमारे माँ बाप भी मुसलमान थे, तो अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी। फिर उसके बाद देखिए, नमाज कायम करते हैं, दूसरी चीज इल्लल्लज़ीना आमनु, उसके बाद वामिलु सालेहात। अमल सालेह में सबसे पहली चीज नमाज है। कोई आपसे पूछता है कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहली चीज नमाज पढ़नी पड़ेगी। किस तरीके से पढ़ेगा, उसमें दुआएं कितनी है, रकू है, सुजूद, इट्स अदर थिंग। बस उसको वक्त पे जाके हाजिरी लगवानी पड़ेगी कि या मालिक मैं हाजिर, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नमाज के बगैर दीन का तसव्वुर नहीं है। चंद दिन है अभी रमजान में, नमाजों की इसलाह करने की जरूरत है। नियत करते आज कि अल्लाह मैं इस साल एक भी नमाज कजा नहीं करूंगी, मैं हर नमाज को उसके वक्त से पहले तैयारी के साथ तैयार रहूंगी ताकि मैं उसको अदा कर सकूं इंशाल्लाह ताला। तीसरी चीज देखिए, रिस्क जो हमने उनको दिया उसमें से खर्च करते हैं। है ना इंसान की बेबसी कि तुम्हारे पास जो है, ये जो तुम लिए फिरते हो ये तुम्हारा थोड़ी है। देखिए ना, हमारे पर्स हमारे हाथ में होते हैं, कोई हाथ लगा सकता है हमारे पर्स को? कोई झांक सकता है अंदर? कोई हमारे लॉकर को देख सकता है? कोई हमारी क्लोजेट खोल सकता है? लेकिन अल्लाह ताला कहता है मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने तुमको दिया उसको खर्च करो। ये चीज है जो दिल के अंदर से बुखल की गिरे निकाल देती है। और याद रखिए, सिर्फ माल ही रिस्क नहीं है, स्किल्स खूबियां अल्लाह ने दी, वक्त अल्लाह ने दिया, और सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने जिंदगी की दी। जरा सा यहां मुहासबा करते हैं, अल्लाह की दी हुई चीजें उसके रास्ते में लगाती हूं? मसलन वक्त अल्लाह ने दिया ना, क्या ये वक्त अल्लाह के रास्ते में लगता मेरा? नहीं लगता, फिक्र कीजिए। माल अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रास्ते में लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लगता है कुछ नहीं लगता। औलाद किसने दी? अल्लाह ने दी। हमने आज अपनी औलादों को हवाओं के रुख पे छोड़ दिया, वक्त ही नहीं है, हाथ में नहीं आते, मसरूफ बहुत है, पढ़ते बहुत है, इम्तिहान बहुत है, अब जॉब शुरू हो गई, अब उनके अपने मशगले हैं, नहीं, इन सारी दौलतों को जमा करके अल्लाह के सामने पेश कर दें। फिर इसके बाद फरमाया, जो किताब तुम पर नाजिल की गई यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं, ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। मुबारक हो आपको, कामयाबी की नवीद मिल गई। अल्लाह सुबहाना तआला ने आपको मुझे इस चीज का यकीन दिला दिया कि आप और मैं अगर कामयाब होना चाहते हैं तो इन 6 कामों को अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। असल बात क्या है, थोड़ी सी बात कामयाबी पे करना चाहूंगी। जो बात समझ आती है ना, इंसान का एक गोल होता है जिंदगी गुजारने का, उसको पाने के लिए कोशिश करते हैं ना, ऐसे ही है ना। बस आप माशाल्लाह बहुत सारी सिस्टर्स हैं, आपका गोल क्या है कि आपने घर को साफ रखना और खाना पकाना है, शाम तक हर चीज अपनी जगह पे हो, तो सारा दिन आपकी एफर्ट्स उसी के पीछे चलती है ना। इसी तरह माशाल्लाह ब्रदर्स हैं हमारे मर्द, उनकी जिंदगी का गोल क्या है कि उन्होंने माल कमाना है, रिस्क हलाल से कमाना है, मेहनत करनी है। तो आप देखते हैं कि एक मर्द का पूरा दिन उसी के मुताबिक गुजरता है, ऐसा है ना। सेम थिंग छोटे बच्चों और बड़ों में भी है, जिस चीज को आप और मैं गोल बनाते हैं ना, हम उसके लिए कोशिशें करते हैं, यानी जो हमारे गोल हैं वही हमारे रोल्स हैं। आज के इंसान का अलमिया क्या है कि उसका कामयाबी का मेयार बदल गया है। आज हमारा कामयाब होने का नुक्ता नजर आखिरत नहीं रही। आज हम कहते हैं जिस पहिए में सब घूम रहे हैं तुम भी घूमोगे तो कामयाब है। आप देखिए, आज एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम की कामयाबी का एक ही स्टैंडर्ड नहीं दिखता। जो पैदा होने से लेकर 2-3 साल का होने पे बच्चे की रिक्वायरमेंट मुस्लिम्स की है, वही नॉन मुस्लिम की है। जिस सिस्टम से वो गुजरता है उसी से वो गुजरता है, और बड़े होके जिस चीज को वो कामयाबी समझता है उसी को मुसलमान भी कामयाबी समझता है। आज के मुसलमान का असल प्रॉब्लम ये है कि औलाए कहुमुल मुफ्लिहून का कॉन्सेप्ट खराब है। हमने आखिरत को रखा हुआ चंद दुआओं के सहारे, चंद सजदों की वजह से किसी की दुआ लग जाएगी, कोई एक ऐसा सजदा नसीब होगा अल्लाह हमें जन्नतियों में भेज देगा, एक ऐसा उम्रा मिल जाएगा जिसकी वजह से हम जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और हमने एक हदीस भी सुनी हुई है कि वो एक तवाइफ थी ना, उसने कुत्ते को पानी पिलाया था तो वो बख्शी गई थी। देखना हमने भी किसी को पानी पिलाने की वजह से बख्शिया जाना, अल्लाह करे ऐसा हो, बट अगर ना बख्शेगे तो ऐसा नहीं है। याद रखिए, इतना कीमती सफर है और हमने उसको चांस पे रखा हुआ है। याद रखिएगा ये बात के एक छोटा सा सफर करना हो हमने तो हम उसके लिए कंफर्म टिकट चाहते हैं, सही डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाते हैं, वक्त से पहले घर से निकलते हैं। तो आखरत की कामयाबियां कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि जब हम हिदायत को मेयार बनाते हैं ना, तो हमें अपनी जिंदगी का एक मकसद मिल जाता है। आप इस क्लासरूम से जरा बाहर निकले, जरा देखें लोग किस चीज को कामयाबी समझते हैं। आज एक इंसान का दुनिया में कामयाब होने का मेयार क्या दिखता है आपको? नमाजी है कि नहीं? कामयाब है। जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की ताबे फरमानी है कि नहीं? कामयाब है। जब हम रिश्ते करते हैं अपने बच्चों के, किस बुनियाद पे करते हैं? माशाल्लाह, खाते पीते, पढ़े लिखे, डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर, बहुत अच्छी बात है, बुरा तो नहीं है, बट क्या उसके अंदर ये एक लफ्ज़ मौजूद है कि वो कामयाब है कि नहीं? ये पहला ग्रुप था लोगों का जिन्होंने जिंदगी की दौलत का हक अदा कर दिया, जिन्होंने जिंदगी को मालिक की दी हुई जिंदगी समझा, तोहफा समझा, कामयाब है। यही है अबू बकर, यही है उमर, यही है उस्मान, और यही है उसके बाद आज तक हर वो बंदा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की ताबे फरमानी में लगे हुए हैं। इसके बाद अब 2 आयतें हैं, आयत नंबर 6 और 7, इसका बिल्कुल ही दूसरा रुख, एक दूसरा किरदार कि जिन्होंने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक कुछ लोग वो भी हैं कौन लोग? जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इनके लिए यकसां है ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया और वो सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। जरा लफ्ज खत्म अल्लाह पे हाईलाइट कीजिएगा, इसको सजा मिली। अल्लाह सुब्हान तआला इंसान की जिंदगी में हिदायत के बहुत सारे मौके लाता है, लेकिन इंसान उससे फायदा नहीं उठाते, तो उसकी सजा क्या मिलती है कि अल्लाह ताला मोहर लगा देता है। सही हदीस से ये बात मिलती है कि जब इंसान एक गुनाह करता है ना, तो उसके दिल पे एक काला धब्बा लग जाता है। ये व्हाइट बोर्ड है, अगर इस पे एक धब्बा लगाऊं आपको दिखेगा भी नहीं, फिर दूसरा गुनाह, फिर तीसरा गुनाह। हो सकता है कि इधर 50-60 नुक्ते लगा दिए जाएं तो पीछे से आपको एक हल्का सा धुंधलका सा नजर आए, लेकिन याद रखिए अगर इस बोर्ड को साफ ना किया जाए और इस पे नुक्ते ही लगते जाएं, हो सकता है चंद दिन के बाद ये व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड बन गया हो। इसी तरह दिलों के अंदर से नेकी की सलाहियत खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हान तआला हर बंदे को हिदायत पर पैदा करते हैं, नेकी का जज्बा उसमें होता है, लेकिन हालात और माहौल उस बंदे को बिल्कुल बदल के रख देता है। आज जिनको आप और मैं काफिर कहते हैं, ये कौन है? ना शुक्रे। एक होता है गैर मुस्लिम, एक होता है काफिर, बहुत बड़ा फर्क है। अभी आप इस पे ना सोचे, हर नॉन मुस्लिम काफिर नहीं है। काफिर वो है कि जिस तक पैगाम पहुंचा और उसने इनकार कर दिया। 13 साल नबी ने इन लोगों के ऊपर मेहनत की, इस्लाम दुश्मनी की सजा इनको मिली, खत्म अल्लाह वाला कुलूबी है। तो आपको मैं एक छोटी सी नसीहत करूं, जब दुआ करते हैं ना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की, तो साथ ही साथ फिर एक और काम भी करें। जब आपकी जिंदगी में किसी नेकी का मौका आए तो इनकार ना करें, छोटी नेकियों को कबूल करेंगे अल्लाह ताला बड़ी नेकियां आसान कर देगा। एक करेंगे दूसरी का रास्ता खुलेगा, और एक दफा आपने एक नेकी का दरवाजा बंद किया, कितने दरवाजे बंद होते जाएंगे। घर का मेन डोर अगर बंद कर दिया जाए तो अंदर घर के सारे दरवाजे आपके लिए बेकार हो गए हैं। तो अल्लाह ताला हमें नेकियों से फायदा लेने वाला बनाए। अब यहां से अगला तीसरा गिरोह है, आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक। देखिए हुजम के एतबार से भी, आयात के नंबर के एतबार से भी ये गिरोह सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया। आइए जरा इसको भी देखते हैं। वमिन नासि मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बास लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं, वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप को ही धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर भी नहीं। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं इसके जुर्म में या इसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सजा है। जब कभी इनसे कहा गया कि जमीन में फसाद बर्पा ना करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इसलाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं। और जब इनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान लाए? खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं, और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है और वो इनकी रस्सी दराज किए जाता है, और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, मगर ये सौदा इनके लिए नफे बख्श नहीं है और ये हरगिज सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की, और जब इसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूरे बसारत सल्ब कर दिया, यानी देखने की सलाहियत छीन ली, और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीखियों में इन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये आप ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूं समझो कि आसमान से जोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं और अल्लाह इन मुनकरीन हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अन करीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब जरा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो इसमें कुछ दूर चल लेते हैं और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो ये खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर देता। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। ये था तीसरा गिरोह जिन्होंने जिंदगी की दौलत से फायदा न उठाया। यहां नाम नहीं आया लेकिन आप इन अलामतों से पहचान सकते हैं ये मुनाफिक है। कुरान पाक में आगे जाकर हम 28वें पारे में एक सूरत भी पढ़ेंगे, सूरत अल मुनाफिकून के नाम पे। यहाँ कुछ अलामतें हैं। मुहासबे की सूरत में जरा सा नोट करते हैं कि कहीं मेरे अंदर कोई निफाक तो नहीं है। पहली अलामत धोखेबाजी। चलिए खुद से पूछते हैं, क्या मैं दूसरों को धोखा तो नहीं देती? क्या मेरी जुबान पे कुछ और मेरे दिल में कुछ और तो नहीं है? क्या मैं इस्लाह के नाम पर फसाद तो नहीं करती? क्या मैं दीनदारों को बेवकूफ तो नहीं समझती? क्या मैं दो चेहरे तो नहीं रखती? क्या मैं जैसा देश वैसा भेस के नजरिए पे अमल तो नहीं करती? क्या मैं ये तो नहीं कहती कि चलो तुम उधर हवा हो जिधर की? क्या मैं फायदे और नुकसान को सामने रखकर अल्लाह के हुक्मों को मानती हूं? क्या मैं हिदायत के बदले गुमराही का सौदा तो नहीं करती? क्या मैं दीन के मुश्किल अहकामात को छोड़कर आसान अहकामात को तो नहीं ले लेती? क्या मेरी नजर में मुखलिस दीनदार बेवकूफ तो नहीं है? इसी तरह के नुक्ते सोचते जाइए, आपको मुझे अपना आप नजर आने लगेगा। एक छोटी सी बात ना कीजिएगा, किसी दूसरे को इस आईने में ना देखिए। हमारा हाल क्या है कि हम जब इस किस्म की बातें सुनते और सुनाते हैं ना, तो कभी अपने रिश्तेदारों को सोचने लगते हैं और कभी हम अपने दोस्तों को और ख़ास तौर पे ससुराली रिश्तेदारों को। नहीं, आपने मैंने खुद को देखना है। आप कहते हैं कि 70 सहाबा खुद पर निफाक का शुबा रखते थे जिनमें हज़रत आयशा सिद्दीका भी मौजूद थी। आपको पता है कि हजरत उमर फारूक हजरत खुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे फिरते थे कि सिर्फ मुझे ये बता दो कि मेरा नाम तो उस लिस्ट में नहीं है जो मुनाफिकों की तुम्हें नबी ने बता दी हमें नहीं बताई। और जिसका नमाज जनाजा हजरत खुज़ैफ़ा ना पढ़ते उमर भी नहीं पढ़ते। जरा सोचिए तो सही। देखिए जिस चीज की वैल्यू होती है ना हम उसके लिए बहुत केयरफुल होते हैं। अच्छा कपड़ा पहनना हो तो हम डरते हैं कि इस पर दाग ना लग जाए। कीमती फोन हाथ में हो तो डर होता है गिरे ना। क्या ईमान भी इतना कीमती लगता है? क्या छोटी छोटी बातों पे इस ईमान को बेच कर ले आएंगे? आप अपने बच्चे को 100 यूरो का नोट दें या 100 यूरो दें आप, और वो जाके उसकी कैंडियां और खिलौने खरीद के ले आए, आप क्या कहेंगे? आप हो सकता है उस 100 यूरो में पूरे हफ्ते का राशन खरीद के ले आए। फर्क होता है ना। तो अजीज साथियों, मैं तो अपने आप से कहूंगी, मुझे इस जिंदगी की दौलत से फायदे का सामान खरीदना है। ये 24 घंटे मेरे आपके पास है। और सच्ची बताऊं तो ये काम करने के 20-25 साल ही हैं जो हमारे गुजर रहे हैं। बचपन में क्या करते हैं हम? गफलत होती है, खेलने को दिल करता है। वो कहते हैं ना, बचपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। आगे वाले जो साल आ रहे हैं आपके हमारे, वो हमसे कुछ नहीं होना। घुटनों में दर्दें होंगी, अल्लाह बचा के रखे। जिस्म में ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती हैं, जहां जाए फिक्र लग जाती है अपनी सेहत की। हत्ता के हरम में जाने वाली सिस्टर्स बेचारी परेशान होती हैं कि वॉशरूम का वहां मसला होगा, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। ये जो साल है ना इस वक्त, इसको पकड़ लें। आइडियल दौर है जिंदगी का 30 से लेकर 40, 50, 60 साल। 60 तो बहुत दूर पड़ा। अगर आपकी मेरी जिंदगी में ये किताब खुल गई है तो अल्लाह से कहें कि अल्लाह मैं अंदर बाहर से पाक कर दे। क्लींजर लेकर दिल को साफ करें, आंखों को पाक करें, कानों को पाक करें और पेट को पाक करें। कल आप सुन के गए इधर ही से, पेट की सफाई नहीं बताई थी। जिस पेट में हलाल के लुक में होंगे ना, उसका तज़किया होगा, उसकी इबादत कबूल होंगी, اس کی افطاریاں قبول ہوں گی، اس کے عمرے قبول ہوں گے، ورنہ نفاق ہے. اور نفاق کیا ہے؟ میں نے اس کا ایک چھوٹا سا نام رکھا ہوا ہے، آدھے دین پہ عمل کرنا، پک اینڈ چوز. یاد رکھیے، پورے نہیں بنتے تو پھر آدھے تو منافق ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا دے. یہاں تک اب دیکھیں تین گروہوں کا تذکرہ ہو گیا. آئیڈیل سچویشن پہلی تھی، ورس سچویشن آخری ہے. ہم سوچتے ہیں کافر بدتر ہیں، ہوں گے، اللہ کہہ دے ان کو، ہم نہیں کہتے. ان آیتوں سے تو لگ رہا ہے منافق کا انجام زیادہ برا. اور سورۃ نساء میں ہم پڑھیں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے.